आप सुन रहे हैं आशा की किरण और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूं मैं किरण आचार्य। बच्चों, आज हम कहानी को जल्दी से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत प्यारा सा संदेश हम सुन लेते हैं जिसे हमें भेजा है प्रणव चौहान ने माउंट आबू से। आप सभी जानते हो माउंट आबू जो है वो राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। वहाँ पर गुरु शिखर है, वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है पहाड़ की, है ना। और प्रणव चौहान की आवाज़ बहुत अच्छी है, ठहराव वाली एक आवाज़ है, उच्चारण बहुत अच्छा है और उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बार बार जानना चाहा है कि दंतिल कौन है, और ये प्रणव नहीं, सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि दंतिल कौन है पंचतंत्र की कहानियों में। लेकिन बच्चों आपको बता दूं, दंतिल के साथ जो सेवक है उसका नाम है गोरम्भ। तो वास्तव में ये दंतिल और गोरम्भ की कहानी है, लेकिन उसको हमने सेवक ही कहा है कहानी में। तो चलिए बिना कोई देर किए सबसे पहले प्रणव चौहान का ये संदेश सुन लेते हैं जो उन्होंने बहुत प्यार से हमें भेजा है, और इसके बाद कहानी शुरू करेंगे।
नमस्ते सबको, मेरा नाम प्रणव चौहान है, मैं माउंट आबू से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 10 साल है। नमस्ते आचार्य मैम, आपके द्वारा चलाया गया आशा की किरण प्रोग्राम के एपिसोड्स मैं रोज़ सुनता हूँ। मेरे दादाजी, मेरे दादी जी और मेरे सारे दोस्त मिलकर चाय नाश्ता करते रहते हैं और आपका प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं। मेरे दादाजी तथा दादी जी को आपके द्वारा सुनाए गए गीता के श्लोक बहुत पसंद आते हैं, और मेरे सारे दोस्त मिलकर आपके पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते हैं। हमें आपका आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा बंदर की कहानी और झोल में बोल, वो सब हमने सुनी और वे सारी कहानियाँ हमें बहुत पसंद रही। और हम अब जल्द से जल्द जानना चाहते हैं कि दंतिल कौन है। आप कृपया ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते रहिए। आज भी हम सब पॉडकास्ट पसंद करते हैं और उसको अच्छी तरह से सुनते हैं। और वह कोरोना वॉरियर नर्स दीदी समेत सारे कोरोना वॉरियर्स जो है उनके नाम मेरा एक पैगाम, लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमने आपसे भी सीखा है कि अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उससे डरेगी नहीं, बल्कि आपकी तरह उससे लड़ेंगे और उसे हराएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो, कहानी सुनो, बुद्धि बढ़ाएगी, सफल बनाएगी, जीवन का ये मूल मंत्र सुनो, कहानी सुनो, गेम वेम सब छोड़ो बच्चों, नानी की जैसी कहानी सुनो, आशा की किरण पॉडकास्ट पर, किरण दी की जुबानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो।
गेम वेम सब छोड़ो बच्चों, नानी की जैसी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो। अरे रिया, मैं तो आंखें बंद करके गा रही थी और हमारे बच्चे तो आकर भी बैठ गए कहानी सुनने के लिए किरण दीदी से। तो मेरे सबसे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को किरण दीदी का प्यार भरा नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। तो बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कहानी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे कह भी रहे हैं कि आगे वाली कहानी कब आएगी। तो भाई, आपके जैसे बच्चे कहानी सुनना चाहें और किरण दी कहानी नहीं सुनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कैसे होगा बताइए, नहीं हो सकता ना। हाँ, तो बच्चों दंतिल की कहानी आज हमको सुननी है। कौन सुना रहा है? दमनक गीदड़, जो मंत्री है पिंगलक का, वो सुना रहा है किसको? संजीवक बैल को। संजीवक बैल ने उससे पूछा कि दंतिल कौन है? बच्चों मुझे ज़्यादा अच्छी आती तो नहीं, लेकिन मैं आवाज़ें निकालने की कोशिश करती हूँ। आपको कैसा लग रहा है इस तरह की आवाज़ें निकाल के, मतलब आपको कहानी सुनाना अच्छा लग रहा हो तो बताना, मैं और भी प्रैक्टिस करूंगी इसकी। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं दंतिल की कहानी। इसका शीर्षक है व्यापारी का पतन और उदय। व्यापारी मतलब बिजनेसमैन, समझे? तो बच्चों वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। मतलब राजा जानता था कि व्यापारी दंतिल बहुत होशियार है, इसीलिए उसने पूरे राज्य का जो कामकाज था उसको सौंप दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। भोज मतलब खाना, है ना? अपन शादी में जैसे खाना करते हैं, वैसे उसने डिनर का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ। अगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ गया और वह सेवक को दुत्कार कर वहां से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, उसको अच्छा नहीं लगता, और वह व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण लेता है। वह निश्चित करता है कि मैं अब दंतिल को सबक सिखाऊंगा। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को आधी नींद में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, इधर आओ सेवक, क्या यह वाकई सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते देखा है, और वो भी रानी के साथ? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा था। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है तो उसे संतरी रोक देते हैं। वहाँ के जो वॉचमैन होते हैं ना महल के, वो उनको रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दंतिल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहां खड़ा हुआ सेवक, कौन सा सेवक? वही सेवक जिसको दंतिल ने कुर्सी से अपमानित करके उठा के दुत्कार कर भगा दिया था उनके वहां जब खाना था शादी का, तब वो वाला सेवक वहां पर खड़ा हुआ था। वो मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं। ठीक वैसे ही इन्होंने मेरे साथ भोज में किया था, तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ गया। वह सेवक को पास बुलाता है और उससे माफी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आवभगत करता है फिर वह उसे बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है, सॉरी बोलता है, और बोलता है कि उसने जो भी किया वह गलत किया। सेवक अब बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह घुसल खाने में भी ककड़ी खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी यह हिम्मत, तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में ही व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। तो राजा फिर से दंतिल को जो है उसके सारे राजकाज के जो अधिकार हैं वो उनको सौंप देता है। तो देखा कैसे एक सेवक ने एक इतने बड़े व्यापारी को सबक सिखा दिया अपना दिमाग लगा के। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों इससे? हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए। और वैसे कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हर काम एक जैसा होता है। हम अगर सफाई भी करते हैं और बहुत ढंग से करते हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं, तो वो काम भी छोटा नहीं है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, इसलिए कोई भी व्यक्ति भी छोटा नहीं होता। इसीलिए हमको सभी का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी आज की हो गई। बार बार पूछा जा रहा था दंतिल कौन है, और हमारे जो नन्हे मुन्ने श्रोता ने जो संदेश भेजा था कि दंतिल कौन है, मैं जानना चाहता हूँ और वेट कर रहा हूँ, तो जो प्रभाव चौहान है उनको इस बात का उत्तर मिल गया। अब आगे की कहानी हम अगली बार सुनेंगे, जिसमें दमनक और पिंगलक की आगे क्या बातें होंगी, संजीवक और कटक आगे मिलके क्या करेंगे। ठीक है, ये कहानी हम अगली बार सुनेंगे। तो फिर अभी आप सभी से यही मेरा कहना है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज भेजिए और बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है पंचतंत्र की कहानियाँ। कोई आपको कठिन शब्द नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे पूछिए, मम्मी पापा को पूछिए। देखिए क्या है, हिंदी हमारी भाषा है बच्चों, हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है ना, तो वो हमको अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने इस तरह की थोड़ी सी कठिन तो है हिंदी, लेकिन हम जब बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो कठिन शब्द आते हैं तो मम्मी पापा से पूछिए और मुझसे पूछिए, फिर हम जैसे जैसे आपको बताएंगे फिर आप भी एकदम बहुत अच्छी हिंदी सीख जाओगे और फिर खुद पढ़ोगे कहानियाँ और सुनाओगे भी। ठीक है, तो अभी किरण दीदी को पंचतंत्र की कहानियों से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।
आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो, कहानी सुनो, बुद्धि बढ़ाएगी, सफल बनाएगी, जीवन का ये मूल मंत्र सुनो, कहानी सुनो। गेम वेम सब छोड़ो बच्चों, नानी की जैसी कहानी सुनो, आशा की किरण पॉडकास्ट पर, किरण दी की जुबानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो।
आप सुन रहे हैं आशा की किरण और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूं मैं किरण आचार्य।